कल की मजलिस से हमने उस नुस्खे के बारे में बात करना शुरू की जो तमाम सिलासिल के बुजुर्गों ने इस्लाह का नुस्खा बताया। और ये इस्लाह का नुस्खा है चार चीजों में कमी करना। किल्लते ताम, खाने में कमी करना। किल्लते मनाम, सोने में कमी करना। किल्लते कलाम, गुफ्तगू में कमी करना। और किल्लते इख्तिलात माल अना, लोगों से मेल जोल में भी कमी करना। इन चार चीजों को अगर गौर से देखा जाए तो सिर्फ ये मशायख तसव्वुफ का बताया हुआ इस्लाह का तरीका नहीं है, और ये सिर्फ सालिकीन तरीकत के लिए नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए जरूरी चीज है। और कल की मजलिस में हमने गुफ्तगू शुरू की किल्लते ताम के बारे में, खाने पीने में कमी करना। और कल की मजलिस में हमने किल्लते ताम से मुताल्लिक बताया कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मनी वही जो ज्यादा खाना खाता है। तो ज्यादा खाने वाले को तो दुश्मन खुदा कहा गया, अल्लाह हो। इसी तरह कल की मजलिस में हमने ये भी बताया कि कम खाना ये नबी अलैहि सलातो सलाम की मुबारक सुन्नत भी थी, और कम खाना नबी अलैहि सलातो सलाम का मुबारक हुक्म भी था। ये भी हमने कल की मजलिस में बताया कि कम खाने वाले बंदे को ज्यादा इबादत की तौफीक मिलेगी। कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम अपने पेट के तीन हिस्से किया करो, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, और एक हिस्सा खाली छोड़ दो अल्लाह की याद के लिए। कि जब पेट पूरी तरह से भरा हुआ होता है तो अल्लाह की याद करना मुश्किल हो जाती है। और इसी तरह कल की मजलिस में हमने ये भी अर्ज किया कि ये जो कम खाना और जिसकी बहुत ही हैरान कुन मिसालें सहाबा इकराम से मिलती हैं, कई कई हफ्ते एक एक खजूर पे गुजारा करना या कई हफ्ते सिर्फ पानी पे गुजारा करना, ये कैसे मुमकिन? ये इंसानी तौर पे मुमकिन नहीं, समझ नहीं आता। मगर कल की मजलिस में हमने बताया कि आज साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि कई हफ्ते खाना ना खाना ये इंसानों के लिए मुमकिन है। इंसान ऐसा कर भी रहे हैं, हत्ता कि इस हदीस के जानने वाले एक साहिबे निस्बत बुजुर्ग है, नौजवान, उन्होंने 21 दिन तक खाना नहीं खाया। 21 दिन सिर्फ पानी पे गुजारा हुआ और आराम से चल रहे थे। उनका ये 21 दिन वाली जो तरतीब थी वो भी उन्होंने इसलिए छोड़ी कि बड़ों ने, बुजुर्गों ने जबरदस्ती करके ये रोजा खत्म करवाया। तो हम जो समझते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत इजीली पॉसिबल है। आज की इस मजलिस में किल्लते ताम से मुतालिक एक दो गुजारिशात और भी करना जरूरी है। एक बात तो ये कि किल्लते ताम जहां इंसान को जिक्र अस्कार इबादत पे मदद देती है, वहां हदीस पाक से पता चलता है कि किल्लते ताम खाने पीने में कमी इंसान को गुनाहों से भी बचा देती है। नबी अलैहि सलात वसलाम ने नौजवानों को हुक्म दिया कि या तो जल्दी शादी कर लो, और अगर वसाइल नहीं है, क्योंकि शादी के लिए शर्त यह है कि इंसान बीवी को संभालने के काबिल हो, उसको घर, उसका खर्चा, उसका खाना पीना, उसके कपड़े वगैरह देने, यानी अगर इंतजाम और अगर काम कारोबार नहीं है, फिर आपने फरमाया नौजवानों रोजा रखो, तो जो खाता पीता कम है फिर वो शहवत से मुतालिक गुनाह भी कम करता है। एक नौजवान अमीर घराने के बैरूनी मुल्क बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जिना के मुर्तकिब नऊज़ बिल्ला हो गए। उनके एक शेख थे, मुल्क में जब आए तो शेख से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि हजरत दिल नहीं चाहता ये गुनाह करो, मगर फंस गया हो, निकल भी नहीं सकते। और इस तरफ इतना रुझान और इतना फितरी लगाव है कि शादी के बारे में वालदैन को कह नहीं सकता कि अभी तो पढ़ाई चल रही है। और अपना रुझान इतना है कि छोड़ भी नहीं सकते। तो उन शेख को उन्होंने कहा कि हजरत अब हल क्या है, अभी आपके पास से जाऊंगा तो भी जिना कर बचूंगा। शेख ने कहा कि हल जो है वो अल्लाह के प्यारे महबूब ने बताया कि या तो शादी करो या रोजे रखो। तो नबी अलैहि सलातो वसलाम की मुबारक सुन्नत थी कि पीर और जुमेरात रोजा रखते थे। सुन्नत की एक और तरतीब भी है और वो सौमे दाऊदी है, वो भी अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया कि एक दिन रोजा और एक दिन इफ्तार करो। तो क्योंकि तुम्हारा ये मामला इतना ज्यादा खराब हो गया तो कुछ अरसे के लिए, चंद हफ्तों के लिए एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार करो और फिर बताओ कि क्या हल निकला। तो शेख की ये बात लेके फिर मुल्क से बाहर चले गए। चंद महीनों बाद मुलाकात हुई, हजरत हैरान हो गए, एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार करने की नीयत मैंने की। मैंने कहा मुझे तो यकीन नहीं कि इससे कुछ होना है, मगर शेख ने कहा है तो ये कर लेता हूं, मैं जिम्मेदार ये हूं कि शेख के बताए हुए हल को पूरा करूं, उसका असर होता है नहीं होता है तो अल्लाह के हाथ। कहने लगे कि एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार की और अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की कि इतने 4 महीने गुजर गए हैं, एक मर्तबा भी ये गुनाह नहीं किया। ऐसा महसूस होता है कि अंदर से ये ख्वाहिश ही खत्म हो गई। तो जहां कम खाने के और इतने फजाइल आए हैं, इससे एक बड़ी फजीलत ये कि ये कम खाना इंसान को गुनाहों से बचाता है। नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक शिमाइल में लिखा है कि आपका पेट इतना अंदर कि सीना थोड़ा बाहर और पेट ज्यादा अंदर। और आज हम समझते हैं कि नहीं, 3 वक्त पूरे खाना तो फर्ज ही है। और थोड़ी सी भूख क्या लग जाए तो हम तो आसमान सर पे उठा लेते हैं, बेगम से भी नाराज तो वालदा से नाराज, जो घर में खाना बनाने वाला 1 घंटा देर हो जाए अल्लाह हू अकबर। अगर सच्ची बात यह है कि इस खाने पीने में सब्र कर लेने का फायदा बहुत ज्यादा है, और तजर्बा यही बताता है कि थोड़े दिन की मुशक्कत, 1-2 दिन की मुशक्कत होती है कम खाने पे, फिर जिस्म सेट हो जाता है। जितने खाने पे इस जिस्म को रखें उतने खाने पे ये सेट हो जाता है। बड़े बड़े लोग जिनका दीन से इतना ताल्लुक नहीं, बल्कि काफिर भी, वो भी ये बताते हैं अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए, पतला बनाने के लिए हमने डाइट की, कोई नहीं, पूरे दिन में 1/4 रोटी खाते हैं, कोई मसला ही नहीं। जिंदगी अच्छी गुजर रही, ज्यादा बेहतर महसूस कर। तो ये जिस्म अल्लाह ने बनाया ऐसा ही है कि जिस्म को जितने खाने पीने पे सेट कर लो ये सेट हो जाएगा, एक चौथाई रोटी पे भी सेट कर लेंगे 24 घंटे में तो सेट हो जाएगा। और तीनों वक्त टिका के पराठे खाना चाहें तो भी सेट हो जाएगा। हमारे हजरत ये वाक्य सुनाते हैं कि हजरत ख्वाजा गुलाम हबीब रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुल्क के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, चकवाल शरीफ में, चकवाल में बड़े अल्लाह वाले थे। 1970 की दिहाई के अंदर खत्मे नबूवत की तहरीक चल रही थी। उस तहरीक में एक तहरीक जो चली वो जेल भरो तहरीक थी कि उलमाए कराम वॉलेंटरली जेल में अपनी गिरफ्तारी देते थे कि जी हमें जेल में डाल। हुकूमत ने ऐलान किया था कि जो ज्यादा शोर हंगामा करेगा उसको जेल में डाल देंगे, उलमा ने कहा डालो जेल में कि इसका कानून पास करना जरूरी है। तो जेलों के अंदर उलमा खूब, हमारे मुल्क के बड़े आलिम दीन थे हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, मुफस्सिर कुरान, हजरत ने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी, बड़े आलिम दीन जेल के अंदर। तो चकवाल की जेल में हजरत ख्वाजा गुलाम हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह और जो बुजुर्ग थे हजरत ख्वाजा गुलाम हबीब उनके बड़े साहबजादे मौलाना अब्दुलरहमान कासमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी दोनों चकवाल की जेल में। जेल वालों ने कहा कि दोनों बड़े बुजुर्ग हैं तो दोनों को एक ही कमरा दे दिया कि इन दोनों को एक कमरे में दे दें कि थोड़ा सा इनके लिए बेहतर होगा। अब कोई मुजरिम तो थे नहीं, इस तहरीक की वजह से दी थी, और भी बहुत सारे उलमा जेल में थे, तो इन दोनों हजरात को एक ही कमरे में रखा था। अब हो ये रहा था कि जेल में खूब उनके लिए खाने पीने भी आ रहे थे, मिठाइयों के तो अंबार ही लग गए, हर बंदा मिठाई ला के दे रहा था कि जी हजरत ने जेल में बैठे हुए खत्म नबूवत के लिए। तो एक ही कमरे में हजरत मौलाना गुलामुल्ला खान रहमतुल्ला अलैह और हजरत मौलाना अब्दुलरहमान कासमी रहमतुल्ला अलैह, दो इतने बड़े बुजुर्ग, तो उस कमरे में मिठाइयों का अंबार लग गया। 12, 13, 14 कोई डब्बे कुल मिला के हिसाब लगाया तो 10 किलो मिठाई कमरे में पड़ी हुई। अब 10 किलो मिठाई, दो इतने बुजुर्ग कहाँ 10 किलो मिठाई खत्म करेंगे। तो मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्ला अलैह ने मौलाना अब्दुलरहमान कासमी साहब से कहा कि जी अब जेल में भी कोई 20-25 उलमा भी हैं और भी लोग ने खत्म नबूवत पे अपनी गिरफ्तारी दी है तो एक दावत ही कर लेते हैं नाश्ते की, नाश्ते में सबको बुलाएंगे, मिठाई खिला देंगे, 10 किलो मिठाई पड़ी हुई है और ये खादिम भी दिया हुआ है जेल वालों ने, तो इसको कहेंगे चाय बना दे। तो अच्छी तरह से हिसाब लगा ले, हिसाब लगाया तो वाकईतन पूरी 10 किलो मिठाई थी। उन्होंने कहा जी अगर एक बंदा 1 पाव किलो भी मिठाई खाए, जो कि बहुत लंबा मुश्किल काम, पाव मिठाई खाना, अगर 1 पाव भी अगर खाएं तो 40 लोगों की दावत आराम से हो सकती है। तो इस खादिम को कहो कि सुबह 40 कप चाय बना दे, 40 मेहमान बुला लेते हैं और सुबह एक नाश्ते की दावत जेल में ही कर देते हैं, इतनी जो मिठाई है। मौलाना अब्दुलरहमान कासमी रहमतुल्लाह ने कहा कि जी हमारा जेल का एक मौला, हमारे चकवाल का एक मौला बख्श है, उसने भी गिरफ्तारी दी है, वो भी जेल में है, खाता बहुत है, तो उसके होते हुए तो कुछ कह नहीं सकते कि आप 40 बंदों को खिला सकेंगे नहीं खिला सकेंगे, वो ज्यादा खाता है। हजरत ने फरमाया भाई कितना ज्यादा खाता होगा, उसने कहा नहीं हजरत आपको नहीं पता बहुत खाता है। मौला गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है फिर ये जो मौला बख्श है ना इसको पहले बुला लो, फजर के बाद ये पहले आके पहले खा ले, फिर जो बचेगा उस हिसाब से उलमा को दावत दे देंगे। मौलाना अब्दुलरहमान कासिम रहमतुल्लाह ने मौला बख्श को कह दिया कि भाई फजर के बाद तूने हमारे यहाँ दावत पे आनी है, तेरी दावत है, मिठाई वगैरह हमारे यहाँ बहुत जमा हो गई है। तो हजरत ने भी फरमाया कि तू आ जा। मौला बख्श साहब जो है दोनों बुजुर्गों के कमरे में पहुंचे, 10 किलो मिठाई पड़ी हुई थी डब्बों में, 40 कप चाय के भी पड़े हुए थे। और ये बात मुस्तनद उलमा से, एक जराए से नहीं कई जराए से इस आजिज ने सुनी है कि इस अल्लाह के बंदे ने नाश्ता शुरू किया, 10 किलो मिठाई भी खा गया और 40 कप चाय भी पी गया। अल्लाह, और मौलाना गुलाम उल्लाह खान साहब उसको देख भी रहे हैं और गुस्सा भी, नाराजगी भी हो रही कि इतना खाता है अल्लाह। खाने के बाद जो है वो थोड़ा सा हिल रहा है और जुल रहा है कि हजरत अब मुझे इजाजत दें। तो हजरत वैसे नाराज थोड़ा सा हो रहे थे, तो हजरत ने कहा अब उसको बाथरूम जाना होगा, ये इसने इतना जो खा लिया है समझ के अकल से खा भी नहीं रहा, 10 किलो कोई मिठाई खाता है? तो उसने कहा नहीं इधर ही बैठा रह तू, नहीं जाना है अब तूने कहीं, अब तो दावत भी किसी की नहीं करनी, कुछ बचा ही नहीं है। उसने कहा हजरत मुझे जाने दे, मैंने यहां से एक और जगह जाना है, मेरी दावत तो जहूर इलाही साहब की तरफ है। नाश्ता मेरा उधर है, आपने तो फजर के बाद बुलाया, असल नाश्ता तो भी वहां जाके करना है। तो ये भूख का मामला ऐसा है, जितना कम खाने पे अपने आप को सेट कर ले सेट कर सकते, जितना ज्यादा पे सेट कर ले सेट कर सकते। ये जरूर है कि ज्यादा खाना इंसान की अकल को भी जायल करता है, इंसान को गुनाहों में भी मुब्तला करता है, इंसान को जिक्र से भी रोक देता है, इंसान को बीमारियों में भी मुब्तला कर देता है। इसलिए नबी अलैहि सलातो वसलाम फरमाया कि तुम में सबसे करीब वो अल्लाह के जो कम खाता हो। तो खाना, खुद खाना जो है वो अच्छा नहीं, दूसरों को खाना खिलाना बड़ी अच्छी बात है। हदीस पाक में आया कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को खाना खिलाए। आज ये रिवायत भी थोड़ी कम होती जा रही है, घरों में दावतें कम हो गई हैं, बस किसी से दावत अगर करवानी है तो उसके ऊपर पिस्तौल ही रखनी पड़ती है कि जी दावत करो। और घर में खवातीन का भी दावत करने का शौक खत्म हो गया, मगर जैसे जैसे ये शौक एक दूसरे के साथ दावत करना, दूसरे को खाना खिलाना, ये खत्म होता जा रहा है, यूं समझ लें कि अच्छाई भी खत्म होती जा रही है। अल्लाह ताला हमें किल्लत ताम वाली नियमत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ व अमलन मुतकब्बला व लिसानन ذاكرا व قلبًا خاشعًا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
وعليكم
السلام
السلام
ورحمة
ورحمة
الله
الله
وبركاته.
وبركاته.